हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनंत ने एक नज़र रुहान को देखा, जो खुद में ही खोया हुआ था। ये देखकर अनंत हंसते हुए बोला, वो तो खुद अपनी पत्नी की डांट से ट्रॉमेटाइज हुए हैं ऐसा लगता है। वे सिर्फ फिजिकल यहाँ हैं, उनका मन तो अभी भी अपनी मैडम जी के ऑर्डर्स के आसपास ही घूम रहा है। बस इसी वजह से उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा। उसकी ये बात सुनकर रूहानी जल्दी से कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, और सच में मेरे भैया अच्छे हैं। वे अगर सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सुनकर अनंत को लगा कि अब राव्या और भी ज्यादा जल जाएगी, पर राव्या ने मुस्कुरा कर कहा, मतलब क्या सबसे अच्छे आप ही हो। मैंने वेदांत भैया को भी देख लिया और अपने इस पति देव को भी, इन दोनों से ज्यादा अच्छे आप हो। वाकई में अनाही की किस्मत बहुत अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ वेदांत का कैमरा, जिसमें से विहा की कुटी कुटी सिसकियां की आवाज आ रही थी, वे इस वक्त दीवार से लगी हुई थी और वेदांत होठों से किस कर रहा था और उसे सांस लेने का भी वक्त नहीं दे रहा था। वहीं विहा का फोन लगातार बज रहा था, जिसकी वजह से विहा उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर वेदांत ने जबरदस्ती उसके दोनों हाथों को पकड़ रखा था और आंखें बंद किए बस उसे किस किए जा रहा था। कुछ ही पलों बाद विहा का सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। ये देखकर वेदांत को ना चाहते हुए भी उसके नरम होठों को छोड़ना पड़ा, लेकिन वे उससे दूर नहीं हुआ था। वे भी उसके सर से अपना सर जोड़े खड़ा लंबी लंबी सांस ले रहा था और अब विहा के होठों को देख रहा था, जो उसके किस करने से कुछ ज्यादा ही लाल हो चुके थे। विहा ने मुश्किल से अपनी सांसें बटोरने की कोशिश की, जिसके साथ ही वेदांत ने एक हाथ से उसका सर सहलाया, जिससे विहा की सांस कुछ नॉर्मल हुई। और अगले ही पल विहा ने गुस्से में कहा, आपको दिख नहीं रहा कब से मेरा फोन बज रहा है, जरूर दी कॉल कर रही होंगी, उन्हें हमारी चिंता हो रही होगी, प्लीज उनसे बात करने दीजिए। वेदांत ने झुकते हुए उसके होठों पर एक लाइट किस करके कहा, नहीं टोमैटो, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, चाहे तुम हजार बहाने बनाओ। ये सुनकर विहा की आंखें फैल गईं। वेदांत उससे कुछ पल के लिए अलग हुआ और फोन उठाकर बिना अनाही की बात सुने एक सांस में बोला, माही, तुम क्यों एक नई शादीशुदा कपल को परेशान कर रही हो? हमें भूख नहीं है, तुम लोग खाना खाकर आराम कर लेना और प्लीज कॉल मत करना, गुड नाइट। इतना बोलने के साथ ही वेदांत ने फोन कट कर दिया। तो वहीं अनाही सुनकर बस अपने फोन को देखते रह गई, जिस पर कॉल कट हो चुका था। अनाही ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, लगता है विहा के साथ रहते रहते वेदांत जी का दिमाग भी खराब हो चुका है, बिना खाना खाए गुड नाइट। वहीं वेदांत के कमरे में विहा इस वक्त बेड पर लेटे हुए वेदांत को प्लीडिंग नजरों से देख रही थी। वेदांत ने अपनी शर्ट उतारते हुए कहा, टोमैटो, अगर तुम्हारी कोई स्पेशल फैंटेसी है तो तुम मुझे बता सकती हो। इतना बोलने के साथ ही वे विहा के ऊपर आते हुए उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में इंटरवाइंड करके बड़ी शिद्दत से उसकी आंखों में देख रहा था। विहा ने अपने निचले होंठ को भींचते हुए कुछ सोचा और फिर धीरे से कहा, अब तो नहीं आई थी बेशरम निकले, मैं तो आपको डिसेंट पांदा समझ रही थी, एकदम नवल में जो हीरो होता है, थोड़ा सा फॉर्मल, बिना फीलिंग्स वाला हार्टलेस टाइप, जिसको इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, खासकर मेरी जैसी लड़कियों में जो थोड़ी सी बुद्धू होती हैं। विहा की आवाज बीच में ही रुक गई थी, क्योंकि वेदांत ने उसके फड़फड़ाते होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वहीं गार्डन एरिया में वे चारों लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वहां सिर्फ शांति पसरी थी, क्योंकि मन ही कहीं गुम थी और उसके अलावा बोलने के लिए कोई भी कंफर्टेबल नहीं था। पर रूहान को अपनी मैडम जी की बहुत चिंता थी। उसने अपने मुंह में मौजूद खाना निकालते हुए अपना गला सही करते हुए कहा, क्या हुआ मैडम जी, आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं, सब कुछ ठीक है ना? क्या हुआ विहा को, क्यों नहीं आई? अनाही, जो किसी सच में गम थी, उसने खोए हुए अंदाज में ही कहा, ऐसा लगता है उन दोनों ने गरबा नाइट को हनीमून नाइट समझ लिया है, बिना खाना खाए ही वो लोग। बोलते बोलते अनाही की आवाज बीच में ही रुक गई और उसे एहसास हुआ कि वे अभी अभी क्या बकवास कर रही थी। उसने हड़बड़ाकर अपनी नजरें उठाई तो देखा वे तीनों आंखें फाड़े बस उसे ही देख रहे थे। राव्या ने जल्दी से अनाही के करीब होकर उसके बाजू पकड़ते हुए कहा, क्या सच में? अनंत ने राविया की तरफ बोरियत से देखते हुए कहा, वे क्या खुद जाकर देखकर आई हैं? उन्होंने तो कॉल करके पूछा था ना, तो सच ही होगा। राविया ने छोटा सा मुंह बनाकर अपनी प्लेट में चम्मच घुमाते हुए कहा, आज ही ये थॉट उसके दिमाग में आया होगा जरूर, इसीलिए वे आज हनीमून सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था विहा अपने इरादे की इतनी ज्यादा पक्की है। इस बार शौक होने की बारी अनाही की थी। अनाही ने आंखें बरी करते हुए कहा, तुम और विहा इस बारे में भी डिस्कस कर सकते हो, मुझे ये अंदाजा नहीं था। अनंत ने भी आंखें बरी करते हुए कहा, ऑफ कोर्स, इतनी जल्दी इतनी प्राइवेट बातों पर कौन ही वार्तालाप करता है, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। राविया को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि वे क्या बकवास कर रही है। उसने बत्तीसी चमकाते हुए कहा, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, आप तीनों तो सीरियस हो गए, चलो ना हम खाना खा लेते हैं, क्यों किसी और की प्राइवेट लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रूहान का तो शर्म से ही बुरा हाल था, वे बस सर झुकाए चुपचाप अपना खाना खा रहा था। उन तीनों लोगों की बातों में उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। उसने तो बस अनाही को परेशान देखकर एक सवाल किया था। उसे नहीं पता था उसका एक सवाल करना उसे इतना महंगा पड़ जाएगा। तभी वहाँ ग्रीन साड़ी पहनी एक औरत आई। वे बड़ा इतराते हुए रूहान और अनाही के पास आई थी। अगले ही पल उसने अपने पर्स से एक नोट निकालते हुए अनाही और रूहान के सर से वार कर मैं के हाथों में देते हुए मुस्कुरा कर बोली, तुम दोनों की जोड़ी को नजर न लगे। उसके बाद उसने सेम चीज उसने राविया और अनंत के साथ की। फिर उसने मुंह बिचकाते हुए कहा, वे तीसरी बहू कहाँ गई जो सबसे ज्यादा चप्पल बोल रही थी, वैसे वे तुम दोनों से ज्यादा अच्छा डांस भी कर रही थी। अनाही ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, डांस करते वक्त उसके पैर इतने ज्यादा दर्द कर रहे थे कि वे लेते ही सो गई, उसे नींद आ गई। वो औरत एक गहरी सांस लेते हुए बोली, आजकल की बच्चियों का कुछ कह नहीं सकते, वे ऐसे